दुनिया में एस्ट्रोफिजिसिस्ट्स यानी खगोल विज्ञानी महिलाएं बहुत कम हैं, और क्या ही संयोग है कि उन चंद महिला वैज्ञानिकों में से एक भारत की एक युवा लड़की है जो ऑस्ट्रेलिया में आकर यहाँ के वैज्ञानिकों के साथ, यहाँ के खगोलविदों के साथ काम कर रही हैं। ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय विज्ञान संस्था CSIRO के साथ शिवानी भंडारी काम कर रही हैं, और उन्होंने एक ऐसी चीज़ खोजी है जिसका पूरी दुनिया में चर्चा हो रहा है। ऐसा क्या खोज लिया है शिवानी भंडारी ने कि पूरी दुनिया के वैज्ञानिक उनकी ओर देख रहे हैं, उन्हीं से जानते हैं। मेरे साथ हैं दिल्ली की रहने वाली और फिलहाल CSIRO ऑस्ट्रेलिया के लिए काम कर रही शिवानी भंडारी। शिवानी, बहुत बहुत स्वागत है आपका SBS हिंदी पर।
सो डॉक्टर शिवानी भंडारी, जो अभी अभी आपने अचीव किया है, ये मेरे जैसे आम लोगों को अगर आप समझा सकें कि आपने क्या हासिल किया है।
हाँ, सो एस्ट्रोनॉमी की दुनिया में फास्ट रेडियो बर्स्ट इज लाइक अ सुपर हॉट टॉपिक, और ये ऐसे मिस्टीरियस सिग्नल है जो हाफ वे अक्रॉस द यूनिवर्स से आ रहे हैं, मतलब बहुत 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 दूर से, मिल्की वे से बाहर बहुत दूर से हमारे पास आ रहे हैं, और दो गैलेक्सीज के बीच की जो स्पेस होती है, इंटरगैलेक्टिक स्पेस से निकलते हुए ये हमारे पास आते हैं। एंड दीज बर्स्ट आर सो ब्राइट, इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं जितने की, वो भी एक मिली सेकेंड में, जितना हमारा सन पूरे 80 साल में एनर्जी जितनी वो रिलीज करता है, उतनी ज्यादा एनर्जी ये एक ब्लिंक ऑफ आई में रिलीज कर देते हैं। ये इतने ज्यादा एनर्जेटिक एक्सप्लोजन होते हैं, और इसकी मिस्टीरियसनेस ये है कि हमें नहीं पता ऐसे क्या सोर्सेज हैं हमारे यूनिवर्स में जो इस तरीके के मैसिव एक्सप्लोजन्स को जन्म देते हैं। सबसे पहले हमारी रिसर्च ने ये हासिल किया कि हमने इन बर्स्ट की एग्जैक्ट पोजीशन को पता लगाया कि ये स्काई में से, इतनी बड़े यूनिवर्स में से किस गैलेक्सी में से निकल के आ रहे हैं। सो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट थी जो बिकॉज ऑफ ASCAP टेलीस्कोप दिस वॉज अचीवेबल। So ASCAP stands for Australia SKA Pathfinder Telescope. It's a CSIRO telescope, और ये Western Australia में Murchison Radio Observatory में है। तो ये ऐसे 36 dishes हैं desert में, और एक dish जो है वो 12 meter diameter में है, और हमने इन dishes को use करके ना ही उन FRBs का पता लगाया, but हमने उनको zoom call किया और हमारी call को answer किया galaxies ने, जो जिनसे ये FRBs निकल के आए।
ये बहुत ही सुनने में बहुत अजीब लग रहा है कि आंसर किया, आपको लगता है कि आंसर करने वाला कोई हो सकता है, मतलब आर देयर एलियंस आउट देयर?
नो, सो एलियंस का तो काफी थ्योरीज हैं एलियंस की, बट अभी जितने भी हमें एविडेंस मिला है, हमें पता है कि ये कुछ, जब हमने वो गैलेक्सीज को जूम इन किया अपने ऑप्टिकल टेलीस्कोप से, जो कि नॉर्मल लाइट को देख सकते हैं, क्योंकि जो ये डिटेक्शन होती है सिर्फ रेडियो टेलीस्कोप ही ये डिटेक्ट कर सकता है, अभी तक फास्ट रेडियो बर्स्ट का और किसी लाइट में इसको नहीं देखा गया है। तो जब हमें ASCAP ने एड्रेस बताया कि ये बर्स्ट इस लोकेशन से आ रहे हैं, तब हमारी जो कोलैबोरेशन है, जो क्राफ्ट के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, डिफरेंट कॉन्टिनेंट से हमारे साथ मिलके काम करते हैं, तो उन्होंने अपने ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स को ट्रिगर किया, और जब हमने उस एरिया की इमेज बनाई तो हमें उस इमेज में गैलेक्सी मिली, और ASCAP की लोकेशन इतनी अच्छी, प्रिसाइसली लोकलाइज किया है ASCAP ने, कि हम ना कि उसकी सिर्फ गैलेक्सी का पता लगा पाए, हम एग्जैक्टली पता लगा पाए कि वो गैलेक्सी में कहाँ से आ रहे हैं। तो जब हमने देखा उस गैलेक्सी को और ये देखा कि फास्ट रेडियो बर्स्ट एग्जैक्टली उस गैलेक्सी से कहाँ आ रहे हैं, तो हमें पता चला ये उसके सेंटर से नहीं आ रहे हैं, ये उसके आउटस्कर्ट्स से आ रहे हैं, मतलब जो डाउनटाउन सेंटर्स होते हैं, CBD होते हैं, वो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होते हैं जो गैलेक्सी के, वहां से इनका कोई लेना देना नहीं है। जो FRBs हैं वो बाहर आउटर सबर्ब, जो काफी क्वाइटर जोन होते हैं, वहां से आ रहे हैं। तो इस फाइंड से हम ये पता लगा सकते हैं कि जो सुपर मैसिव ब्लैक होल्स, जो कि एक मॉन्स्टरस एक्सप्लोसिव, एक बहुत जायंट सा एक ऑब्जेक्ट होता है, वो गैलेक्सी के हार्ट में रहता है। तो अगर ये फास्ट रेडियो बर्स्ट गैलेक्सी के सेंटर से नहीं आ रहे हैं, उसके आउटस्कर्ट से आ रहे हैं, तो हम ये इमीडिएटली रूल आउट कर सकते हैं कि उस फास्ट रेडियो बर्स्ट का सोर्स जो है वो सुपर मैसिव ब्लैक होल नहीं है। और अगर आप उसे पूछे कि अब हमें गैलेक्सी का पता चल गया, तो अब हम आगे क्या कर सकते हैं, आगे हम इसके नेबरहुड में जांच पड़ताल कर सकते हैं कि इस FRB के इमीडिएट इन्वायरमेंट में ऐसा क्या हुआ जिसने इतने मैसिव एक्सप्लोजन को जन्म दिया। तो अभी हम आगे की रिसर्च हमारी उस तरफ जा रही है।
वो जो मोमेंट था शिवानी, वो क्या एक यूरेका मोमेंट था, एक मोमेंट था जब लगा कि ये क्या हो रहा है, और इट वाज अ लॉन्ग बोरिंग प्रोसेस?
इट वाज नेवर अ बोरिंग प्रोसेस, क्योंकि हमें जब पहला सिग्नल मिला था, ये 2007 में डंकल नॉरेमन ने पहला सिग्नल ढूंढा था, वो कुछ और वो पल्सार्स को ढूंढ रहे थे, और उन्हें अचानक से एक जैसे सेरेंडिपिटस डिस्कवरी होती है, उसमें उन्हें ये एक सिग्नल मिला, और उसके बाद से ये FRBs की पूरी कहानी शुरू हुई। पर जैसे जैसे हमें इसके बारे में पता चला, टेलीस्कोप्स ने अपनी मशीनरी को उस तरीके से सुधारा, क्योंकि जैसे ASCAP है, अब ASCAP का सबसे बड़ा पॉइंट क्यों है, क्यों ये इतना अच्छा है FRBs की एग्जैक्ट पोजीशन बताने के लिए, क्योंकि ASCAP का जो फील्ड ऑफ व्यू है, जितना स्काई ASCAP एक बार में देख सकता है, वो बराबर है कि अगर आप 60 मून्स को अलाइन करके एक साथ रख दो, तो उतना बड़ा स्काई ASCAP देख सकता है, और आप जितना बड़ा स्काई देखोगे उतने ज्यादा चांसेस हैं कि आपको ये बर्स्ट मिल जाएंगे।
शिवानी, टॉकिंग अबाउट योर जर्नी, वेयर डू यू कम फ्रॉम एंड हाउ डिड यू अराइव हियर इन ऑस्ट्रेलिया?
हाँ, दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। मैंने अपने स्कूलिंग के बाद इंजीनियरिंग करी थी, बट मेरा बहुत मन था कि मैं साइंस में जाऊं, पर इंडिया में मुझे इतना अच्छा गाइडेंस नहीं मिला कि मैं एस्ट्रोफिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी कैसे कर सकती हूं। तो मैंने भी इंजीनियरिंग करी, बट इंजीनियरिंग करने के बाद जब मैं जॉब में गई एक नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगा वहाँ, और मुझे साइंस करना है। तो फिर मैं RRI में गई, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहाँ की काफ़ी अच्छे विजिटिंग स्टूडेंट प्रोग्राम होते हैं, तो उसमें मैंने एक प्रोफेसर को कॉन्टैक्ट किया, और मैंने उनसे बोला कि मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये रेडियो एस्ट्रोनॉमी का फील्ड, मुझे इसके बारे में जानना है, और उन्होंने मुझे एज अपना स्टूडेंट लिया थोड़ा सा पार्ट टाइम इंटर्नशिप करने के लिए, और वहीं से ही मेरा ये रेडियो एस्ट्रोनॉमी का इंटरेस्ट डेवलप हुआ। और फिर रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में काफ़ी सारी कॉन्फ्रेंसेस होती थी, जहाँ पे ऑस्ट्रेलियन एस्ट्रोनॉमर्स आके अपनी साइंस के बारे में बताते थे, तो वो कॉन्फ्रेंस में भाग लेने का हिस्सा मिला, और पता चला कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छा रेडियो एस्ट्रोनॉमी पे काम हो रहा है। और फिर मैंने PhD के लिए अप्लाई किया यहाँ पे, और जब मेरी फाइनली जो मेरे सुपरवाइजर्स थे मैथ्यू बेल स्विनबर्न, उन्होंने एक्सेप्ट करा मेरा PhD ऑफर, और मैंने इस तरीके से इंडिया में थोड़ा सा स्ट्रगल करके, रिसर्च एक्सपीरियंस गेन करके, इंजीनियर से सीधा एक जंप मार के मैंने PhD में अपने आप को इनरोल किया। पूरी जर्नी रही RRI में, NCRA में, वो बहुत इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि उसके बिना मैं जहाँ हूँ वहाँ नहीं पहुँच पाती, क्योंकि जो गाइडेंस वहाँ के प्रोफेसर से बात करके मिली, पता चला कि रिसर्च कैसे होती है, रेडियो एस्ट्रोनॉमी के बेसिक्स पता चले। उसके बाद जब मैं मेलबर्न में आई, तब जो हमारे जो सुपरवाइजर हैं, वो ये मोलोंगलो रेडियो टेलीस्कोप जो एक कैनबरा में है, उसे रिफर्बिश कर रहे थे, और उस टेलीस्कोप का एक मेजर गोल था FRBs को ढूंढना। और तब से मैं इस FRB की फील्ड में इन्वॉल्व हुई, और जब मेरी PhD चल रही थी, तब उसके दौरान मैंने 4 फास्ट रेडियो बर्स्ट डिस्कवर किए पार्क्स रेडियो टेलीस्कोप से, और सबसे बड़ा मैसिव मल्टी वेवलेंथ फॉलोअप मैंने ऑर्गेनाइज किया। तो तब से ये पूरी जर्नी बिगिन हुई।
और भारत में आप कहाँ से हैं, आपका परिवार कहाँ है?
न्यू दिल्ली में। सो मेरे मम्मी पापा न्यू दिल्ली में हैं, और मैं भी वहीं पे ही बड़ी हुई हूँ। 25 साल मैंने इंडिया में न्यू दिल्ली में ही स्पेंड किए हैं। उसके बाद मैं ऑस्ट्रेलिया आई, अभी मुझे 5-6 साल हो गए हैं ऑस्ट्रेलिया में।
इसके साथ टीम है, और खासकर एस्ट्रोफिजिसिस्ट, जब दुनिया में बहुत फीमेल एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं,
ये काफी सैड बात है कि इतने फीमेल एस्ट्रोफिजिसिस्ट नहीं है जितने की मेल हैं। तो एक मेरा एम यही रहेगा कि मैं जितनी भी लड़कियां हैं उनको मैं काफी इंस्पायर कर पाऊं, और उनको बता पाऊं कि ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, आपको जस्ट क्यूरियस और डिटरमिन्ड होना है, अपने पैशन को फॉलो करना है, आपको कोई सुपर जीनियस नहीं होना है, क्योंकि मैं आई डोंट थिंक सो आई एम सुपर ब्रेनी और सुपर जीनियस। बस मुझे ये फील इतनी अच्छी लगती है, और मेरे को इतनी क्यूरोसिटी होती है कि ऐसा क्या हो रहा है यूनिवर्स में, और जो इतने बड़े क्वेश्चंस होते हैं यूनिवर्स के, उनको सॉल्व करने की मेरे में जागरूकता होती है। तो इसकी वजह से कोई भी ये रिसर्च कर सकता है, और मैं रियली बोलना चाहूंगी कि जितनी भी लड़कियां हैं और जिनको इंटरेस्ट है इसमें, वो डेफिनेटली इसको परस्यू करें, और अगर मैंने किया है ये सब, तो डेफिनेटली वो भी कर सकती हैं।
वेल, हम जानते हैं कि यू आर अ जीनियस, और हम महसूस भी कर सकते हैं वो, बट जो साइंटिस्ट की दुनिया होती है शिवानी, हम बाहर के लोगों को लगता है कि नर्ड्स होते हैं और कंप्यूटर के आगे सारा दिन बैठे रहते हैं या किताबें पढ़ते रहते हैं, क्या साइंटिस्ट की दुनिया ऐसी ही होती है?
डिपेंड करता है. देखो आजकल की अब जैसे मैं हूँ, मुझे मुझे रीडिंग करना इतना पसंद नहीं है. मैं हाइकिंग पे जाती हूँ, मैंने स्काई डाइविंग की है, मैंने स्कूबा डाइविंग की है, तो काफी वेरिड इंटरेस्ट हैं. तो ऐसा नहीं है कि हाँ मुझे पता है वो एक इम्प्रेशन बना हुआ है कि साइंस, मेरे खुद के पापा भी बोलते हैं कि साइंटिस्ट लोग थोड़े पागल होते हैं, तो किसी और दुनिया से आई हुई है. बट ऐसा कुछ नहीं है, इट्स जस्ट दैट ये हमारा काम है और हम अपने काम को बहुत अच्छे से करते हैं और उसे प्यार करते हैं. तो बस वही एक डिटर्मिनेशन और एक वो रहता है कि हमें इस फील्ड में आगे बढ़ना है, कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन करना है. और इसके लिए आपको नर्डी या फिर इस तरीके का नहीं होना. आप नॉर्मल लोग भी ये करते हैं, इट्स जस्ट दैट इतने लोग ऐसा नहीं करते हैं, मतलब वो ये फील्ड नहीं चूज करते हैं, तो उन्हें लगता है कि जो ये फील्ड में जाते हैं वो कुछ स्पेशल लोग हैं. बट ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको वो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए और आपको वो हार्ड वर्किंग और आपको डिटर्मिन रहना चाहिए कि हाँ मुझे, मैंने ये डिसाइड किया है तो मैं ये करूँगी. अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए और कोई भी कर सकता है ये.
और आखिर में आप एक ऐसे फील्ड में हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है. स्पेस पता नहीं कितना बड़ा है, क्या है वहां. सो इज देयर एनीथिंग स्पेसिफिक यू आर लुकिंग फॉर के मुझे ये चीज खोजनी है, या कोई ऐसा गोल है जो शिवानी का है, जो ये एक क्वेश्चन जिसका आंसर शिवानी ढूंढ रही है.
नियर फ्यूचर की बात करें तो मैं ये पता लगाना चाहती हूँ कि ये सिग्नल्स को ऐसी क्या चीज है जो जनरेट करती है. इस रिसर्च की हेल्प से हम एक स्टेप आगे बढ़ पाए हैं उसमें. तो इमीडिएट गोल मेरा यही है कि मुझे ये पता लगाना है कि ये FRBs कहाँ से आ रहे हैं, ऐसा क्या सोर्स है जो इतना एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है एक मिलीसेकंड में. और उसके बाद जैसे जैसे हम और फास्ट रेडियो बर्स्ट ढूंढते जाएंगे तो हम आगे बढ़ते जाएंगे, यूनिवर्स की और मिस्ट्रीज को अंडरस्टैंड करते जाएंगे. और अगर हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ FRBs होते हैं तो हम डार्क एनर्जी के बारे में भी पता लगाना शुरू करते हैं जो कि हमारे यूनिवर्स को एक्सपैंड करती है. तो ये सारी लॉन्ग टर्म विजन्स हैं. तो हम इतनी सारी चीजों के बारे में पता लगा सकते हैं, बट इमीडिएटली जो मेरा इंटरेस्ट है, जो विच हेल्प मी गेट आउट ऑफ माय बेड, इज FRB को क्या प्रोड्यूस करता है.
Do you guys get to name things in space? Asteroids, medium asteroids, stars. Do you guys get to name them?
अभी तो इट्स लाइक अ वेरी बोरिंग वो जो भी नॉमेनक्लेचर होता है. FRB मिलता है, अगर वो आज मिलेगा सपोज, तो हम बोलेंगे FRB आज का ईयर, आज मंथ और आज की डेट. तो ऐसे कुछ फैंसी नहीं है कि मैंने एक बोल दिया इस FRB को मैंने शिवानी बोल दिया, या FRB को मैंने अपनी मम्मी का नाम दे दिया, ऐसा नहीं है. उसका एक नेम होता है और जो नेम कम्युनिटी ने एस्टैब्लिश किया है कि पहले ईयर आना है, फिर मंथ आना है, फिर डेट आना है, वो वैसे ही सारे FRBs का नाम होता है.
पता नहीं आपको कोई सितारा मिलेगा या नहीं जिसका नाम आप शिवानी रख सकें, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हमें एक सितारा मिला है जिसका नाम शिवानी है. तो इसलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट शिवानी.
थैंक यू सो मच विवेक, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके भी.
ऐसी ही और कहानियां सुनना चाहते हैं? Apple Podcast, Google Podcast, Spotify या फिर जहां आप podcast सुनते हैं वहां हम हैं.